दिन भर तारीख 11 मई दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के बीच सीधी बस सेवा की हुई शुरुआत।
भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
गुड़गांव में आशंकाओं के विपरीत आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। मखमली आवास के जादूगर तलत महमूद के सैकड़ों नगमे फिजा में आज भी तैरते हैं। कैसे इंसान थे वो?
The very gentle mannerisms और लखनऊ की तहजीब तो बहुत ज़्यादा कूट कूट के जैसे उनके अंदर थी, मगर मिजाज के बहुत जेंटल थे, हसमुख बहुत थे, बहुत जिंदा दिल थे।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिन की यात्रा पर आज नेपाल पहुंचे। वो जनकपुर पहुंचे जहां उन्होंने जानकी मंदिर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ पूजा की। मोदी और ओली ने जनकपुर से अयोध्या के बीच सीधी बस सेवा की भी शुरू करने की घोषणा की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि नेपाल और भारत की दोस्ती त्रेता युग से चली आ रही है। यहां से वो काठमांडू पहुंचे जहां उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली और उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन से मुलाकात की। मलेशिया के डिप्टी प्रधानमंत्री वान अजीजा वान इस्माइल ने कहा है कि उनके पति अनवर इब्राहिम को 2-3 दिनों के भीतर जेल से रिहा किया जा सकता है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने वादा किया था कि वो अनवर इब्राहिम को आज़ाद करेंगे। इब्राहिम महातिर मोहम्मद के सहयोगी रह चुके हैं और उन्हें शुक्रवार को मलेशिया के राजा से ने भी इनके बारे में कहा था कि उन्हें माफ़ी दी जाएगी। इब्राहिम फिलहाल अस्पताल में हैं जहाँ कंधे में चोट के लिए उनका इलाज चल रहा है। अमेरिका के परमाणु करार से खुद को बाहर कर लेने के बाद ईरान के यूरोपीय विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस से पूछा है कि वो बताएं क्या कि ईरान ने हाल में जो 100 हवाई जहाज़ों का ऑर्डर उसे दिया था वो उसे पूरा करेगी या नहीं। अमेरिका के लगाए नए आर्थिक प्रतिबंधों का असर एयरबेस के लिए पुर्जा बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर पड़ सकता है। अमेरिका के करार को तोड़ने के फैसले पर यूरोपीय नेता पहले ही चिंता जता चुके हैं। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो लेमेयर ने फ्रेंच रेडियो को बताया कि वक्त आ गया है कि यूरोपीय देश अमेरिका पर निर्भर रहना बंद करें।
Nous voulons être des vassaux qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon.
क्या हम चाहेंगे कि उनके प्रतिनिधि हमें इनकार करते रहें और हम अमेरिका के लिए फैसलों के सामने झुकते रहें ताकि अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखे, और हम यूरोपीय अपने हितों के साथ कूटनीतिक समझौते के तहत ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते जारी रखने को बेहतर नहीं मानते, खासकर तब जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने को राजी हो। क्या हमें लगता है कि ये करना सही है और हम ईरान के साथ व्यापार करना जारी रखें? यहाँ पर यही अहम मुद्दा है और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि यूरोपीय देश अपनी आँखें खोलें और सही फैसला लें। ये थे फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो लेमेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उन्होंने कांगो गणतंत्र की सीमा से सटे 9 देशों को इबोला वायरस के प्रकोप के बारे में सचेत कर दिया है। संगठन का कहना है कि फिलहाल इसके फैलने का बड़ा खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ बुरा हो उससे पहले तैयारी करनी जरूरी है। उत्तर पश्चिम कांगो में इबोला के 11 मामलों की पहचान की गई है। संगठन के इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के उप महानिदेशक पीटर सालमा ने कहा कि मामले का पाया जाना अपने आप में ही चिंता की बात है।
The problem here is that we already have 3 separate locations that are reporting cases that cover as much.
समस्या यह है कि हमें 3 अलग अलग इलाकों से इबोला के मामले पता चले हैं और ये इलाके 60 किलोमीटर के दायरे में हैं। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले 3 कार्यकर्ता भी इससे संक्रमित हुए हैं। कल ही हमें यह खबर मिली कि इनमें से एक की मौत हो गई है। हम ये जानते हैं कि इस तरह के प्रकोप के मामलों में स्वास्थ्यकर्मियों के कारण भी ये फैल सकता है। हम जानते हैं कि इस तरह के हर मामले पर नजर रखना जरूरी है और हमें चिंता है। हम हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी पीटर सालमा के शब्द। कीनिया ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना एक उपग्रह छोड़ा है। नैरोबी विश्वविद्यालय में बने इस उपग्रह को बनाने में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मदद की थी। इस उपग्रह को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। ये नैनो सैटेलाइट है और कॉफी के एक कप जितना बड़ा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इससे पहले आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, आपको याद दिला दें कि बीबीसी हिंदी सेवा आज 78 साल की हो गई। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा।
भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मंत्रोच्चार के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के जनकपुर में थे। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल दो देश हैं, लेकिन उनकी मित्रता आज की नहीं बल्कि त्रेता युग की है। प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी नेपाल यात्रा थी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के बाद संदेश गया था कि उच्च स्तर पर भी भारत की नेपाल में रुचि है, लेकिन सितंबर 2015 में नाकाबंदी के दौरान उभरे भारत विरोधी प्रदर्शनों ने संबंधों पर गहरी छाप छोड़ी। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे नेपाल के जनकपुर पहुंचे। अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे संपर्क साधा और पूछा कि मोदी ने क्या कुछ कहा।
मोहनलाल जी, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में काफ़ी देर तक भारत और नेपाल के जो गहरे रिश्ते हैं, रिलीजियस रिश्ते हैं, उन पर बात की। जनकपुर और अयोध्या के बीच में जो रिश्ते हैं नज़दीकी, उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि लुम्बिनी जो है वो भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। कुछ लोग भारत में इस पर सवाल उठाते रहे कि ऐसा नहीं है, गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ। इसके अलावा उन्होंने जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिस पर नेपाल में एक सोच है कि भारत परियोजनाओं का अनाउंसमेंट तो कर देता है लेकिन वो परियोजनाएं पूरी नहीं होती हैं, उस पर बात की उन्होंने कि किस तरह से इन परियोजनाओं से नेपाल का विकास होगा। और जानकी मंदिर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने रामायण सर्किट की बात की कि कैसे अयोध्या और जनकपुर के बीच बस के माध्यम से लोग कैसे सफर कर सकते हैं, कैसे उनकी यात्रा आसान होगी।
सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। आज जनकपुर अयोध्या सीधी बस सेवा का प्रारंभ हो रहा है।
हमारी सरकार स्वदेश दर्शन नाम की योजना चला रही है। रामायण सर्किट में हम उन सभी स्थानों को जोड़ रहे हैं जहां जहां भगवान राम और माता जानकी के पग पड़े हैं।
भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते जो हैं वो बहुत ठंडे पड़े हुए थे काफी अरसे से। नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद इसके मायने क्या हैं, राजनीतिक मायने क्या हैं दोनों देशों के बीच?
मोहला जी, दो बात यहाँ पर लोग विश्लेषक कह रहे हैं। पहला ये कि जो कुछ सितंबर 2015 में हुआ, जो ब्लॉकेड हुआ नेपाल में, यहाँ पर तेल, दवाएं या फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं आ पाई, जिसके लिए नेपाल के लोग, बड़ी संख्या में लोग भारत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि 135 दिन जो हमने सहे बहुत ही मुश्किल थे, और भारत और नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार हैं। और जिस तरह की उम्मीदें जगी थी पहली दो यात्राओं से, नरेंद्र मोदी की विजिट से यहाँ पर, वो कहते हैं उनको धचका लगा। तो जो यहाँ पर विश्लेषक है वो ये कह रहे हैं कि भारत की कोशिश है कि उनके हिसाब से जो गलती हुई है उसको सुधारा जाए, उसकी तरफ एक पहला कदम है। दूसरी बात जो विश्लेषक कह रहे हैं वो ये कि भारत में 2019 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और क्योंकि मधेस में रहने वाले लोग, जो बॉर्डर के जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो रहने वाले लोग हैं, उनसे बहुत ही पारिवारिक रिश्ते हैं, गहरे संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये जो यात्रा है, एक निगाह उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर है, उनकी सोच राजनीतिक है, ये विजिट राजनीतिक है, उनका कहना है।
विनीत खरे बता रहे थे। लेकिन नेपाल की जनता मोदी की इस यात्रा के बारे में क्या सोचती है, विनीत खरे बात कर रहे हैं कुछ लोगों से।
हम इस वक्त हैं जनकपुर में, नेपाल में, जहां पर अभी नरेंद्र मोदी का जो भाषण था 12 बीघा मैदान में, सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे, वो भाषण खत्म हुआ है। लोगों से बात करते हैं कि उनकी जो उम्मीदें थी इस भाषण से, क्या वो पूरी हुई हैं कि नहीं, क्या कहेंगे जो भाषण हुआ है। उन्होंने मिथिला और अयोध्या के संबंधों की बात कही है, जो उम्मीदें थी पूरी हुई है इस भाषण से, क्या उम्मीद?
बिल्कुल पूरी हुई है। उन्होंने 100 करोड़ का जो गिफ्ट दिया है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।
अभी कौन मुझसे कह रहा था कि 10,000 करोड़ की उम्मीद थी, लेकिन 100 करोड़?
नहीं नहीं, 100 करोड़ का था, 100 करोड़ मिला,
100 करोड़ मिला,
बहुत मिला, कम।
किस तरह के विकास की जरूरत है यहाँ पे?
यहाँ पर तो एक हॉस्पिटल चाहिए, एम्स के स्तर का अस्पताल जरूरी है। कृषि क्षेत्र के विकास में तो बोले ही है, स्टेडियम की बात कही है, ये सब हो रहा है, इसकी खुशी की बात है। मैं उनको पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल और भारत के संबंध जो अध्यात्म बात का था, उन्होंने आज जोर दिया है कि व्यापार बात के साथ ही जोड़ना चाहिए। नेपाल में जो विद्युत का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसको व्यापार बात के जोर, ये बात
मतलब बिजली साथ में प्रोड्यूस करें, उसको बांटने
की जरूरत पड़े,
बहुत काम हो भी रहा है लेकिन बहुत देरी से काम हो,
देरी से हो रहा है, जल्द ही काम हो और एक काम हो तो निश्चित ही नेपाल और भारत का जो है एक खुशहाल जो है राष्ट्र के रूप में उन्नत होगा। ऐसा
जो आंदोलन हुआ था, कई लोग जो मारे गए थे 2015 में, जब मैं अंदर था तो कई लोग उससे नाराज थे कि उनकी कोई बात नहीं होती है।
नेपाल में जो संविधान बना हुआ उसमें मतलब पक्षपातीपूर्ण संविधान बना हुआ है, उसमें जनता सबके जितना राइट्स होना चाहिए वो यहाँ पर समेटे हुए नहीं है संविधान में, ये मतलब संविधान उसमें सुधार हो।
आप कुछ बात करेंगी, मोदी जी का भाषण सुना आपने, कैसा लगा?
उनका भाषण तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका जो भाषण में एक मेन पॉइंट आया था कि बच्चे का पढ़ाई, युवा का कमाई और बुढ़ापे का लिए दवाई, ये तीनों का अगर जरूरी पूरा हो जाए इस देश में तो फिर सब अच्छा है।
मोदी जी ने जो नारी महिला सबके लिए बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पे महिला सब भी आगे बढ़ रहे हैं, मिथिला चित्रकला ये सब देश में मतलब जनकपुर में ही नहीं ये देश में भी प्रचलित बहुत हो रहा है, वो सब के बात कही, वो सब बहुत अच्छा लगा
कि जो यहाँ हमारे सदियों से बेटी रोटी का संबंध है।
हाँ, उन्होंने बात की है,
उन्होंने बात किए हैं। सबसे अच्छी बात बड़ा है कि सब दिन से लगाव हो गया है नेपाल से और इस मिथिला प्रांत से।
विनीत खरे बात कर रहे थे जनकपुर के कुछ लोगों से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये थी नेपाल यात्रा।
बीबीसी इंडिया बोल।
कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अधिकारियों और जवाहरलाल नेहरू के बीच मत विरोधों का जिक्र किया। राजनीति के अखाड़े में फौज का जिक्र कितना उचित है, क्या फौज को राजनीति से अलग नहीं रखा जाना चाहिए, इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 12 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो ये थी इंडिया बोल की जानकारी। गुड़गांव में आशंकाओं के उलट आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सार्वजनिक स्थलों पर अदा होने वाली जमातों की तादाद पहले की तुलना में बहुत कम थी। पिछले कई जुमे को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्ववादी संगठनों ने कई जगहों पर नमाज को बाधित किया था। उनका कहना था कि ये नमाज सरकारी जमीनों पर बिना अनुमति के अदा की जा रही है। फैसल मोहम्मद अली आज गुरुग्राम में थे, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
100 से अधिक जगहों की बजाय जहां पिछले हफ्ते तक शहर में जुमे की नमाज अदा की जाती थी, आज गुड़गांव शहर के मुसलमानों ने पुलिस बंदोबस्त के बीच 23 सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ी। प्रशासन ने लंबी बैठकों के बाद 25 जगहों की लिस्ट जारी की थी जिसमें ईदगाह और एक अन्य सेक्टर की अधूरी मस्जिद भी शामिल है। इनका चुनाव मुस्लिम रहनुमाओं और प्रशासन के बीच हुई लंबी बैठकों में तय किया गया था। हिंदुत्व संगठन संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने हालांकि प्रशासन से सार्वजनिक जगहों पर पढ़ी जाने वाली नमाजों की तादाद को 5 तक सीमित रखने की मांग की थी। हालांकि नमाज अदा करने के लिए जमा होने वालों में भारी आशंका थी। मुजफ्फरपुर बिहार के अमजद हुसैन शहर में सिलाई का काम करते हैं।
हम लोग डर फील करते हैं लेकिन सुरक्षा के लिए पुलिस दिया हुआ है और इस बेस पे हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे।
बदायूं के आरिफ अली ऑटो रिक्शा चलाते हैं और लेजर वैली कच्ची पार्किंग में जुमा की नमाज अदा करने पहले से आते रहे हैं।
अंधेरा जो है 1 घंटे का टाइम होता है, बस उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। अब इसमें तो किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, भी नमाज पढ़ लेते हैं जुमे की तो सुकून मिल जाता है। और हंगामा करा जिन लोगों ने, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
हिंदुत्व समूहों ने पिछले 20 दिनों में कई दफ़ा जुमे की नमाज के बीच जाकर नारे लगाए थे और नमाजियों को वहां से जाने को मजबूर किया था। उनका कहना था कि मुसलमान सरकारी ज़मीनों पर बिना इजाज़त नमाज पढ़ रहे हैं जिससे लोगों को असुविधा होती है। हालांकि मुस्लिम रहनुमा शहजाद खान इस आरोप को गलत बताते हैं।
देखिए, एक तो ये जो बात उड़ रही है बिल्कुल गलत है। आज जहाँ आप खड़े हुए हैं ये लेजर वैली कच्ची पार्किंग कहलाता है, चक्रपुर से हमें हटाया गया, तो हमने यहाँ के लिए 13/10/2013 में हमने उनको कहा कि हमारे पास नमाज पढ़ने की जगह नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड है।
हो सकता है कि लेजर वैली के मामले में ऐसा ना हो, लेकिन कई ऐसी जगहों पर जुमे की नमाज अदा की जा रही थी जिसकी औपचारिक आज्ञा समुदाय के पास नहीं थी। लेकिन एक सच ये भी है कि शहर की 13 मस्जिदें लगभग 3 लाख की मुस्लिम आबादी के लिए बहुत कम है। कुछ लोग हिंदुत्व समूहों के हंगामे और आरोपों को हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने की राजनीति के तौर पर देखते हैं। खैर, आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। नमाज में ही हमारी मुलाकात आरिफ अली से हुई जिनका इस मामले पर हो रही कथित राजनीति करने वालों से कहना था,
हिंदुस्तान जो है हमारा एक सब रंगों की वजह से ही हिंदुस्तान दिखाई देता है। वो अब उसमें अगर एक रंग भी फीका हो जाए तो हिंदुस्तान से ऐसा लगता है कि कोई बेरंग चीज हो गई।
ये थी फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हिमांशु राय ने आज मुंबई में अपने घर में सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 55 साल के राय की छवि एक सख्त अधिकारी थी। नितिन श्रीवास्तव मौजूद हैं, सुपर कॉप कहा जाता था हिमांशु राय को, बताइए इनके बारे में।
हिमांशु राय जो थे दो तीन बड़े ऐसे केसेस थे हाई प्रोफाइल, जैसे क्रिकेट में मैच बेटिंग का केस
आईपीएल
में, और उसके अलावा उन्होंने कई क्राइम अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों की छानबीन की,
ज्योतिर्मय डे का अभी मामला था,
तो इसकी वजह से वो काफी लाइमलाइट में थे। और पिछले कुछ सालों से कैंसर से पीड़ित चल रहे थे, उसके बाद लीव पर चले गए थे और पुलिस में एडीजी के पद पर काम भी कर रहे थे। लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि जिनसे उनकी हाल में मुलाकात हुई वो उनसे ये ज़रूर उन्होंने शेयर किया था कि वो बहुत हताश से चल रहे थे और कैंसर और कीमोथेरेपी वगैरह के बाद से उनका मोराल जो था, उनका जो मनोबल था, वो थोड़ा कम आ गया था, शायद ये एक वजह रही हो।
बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव आपका। कार्यक्रम में अब चर्चा विवेचना की। भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्ण काल के सबसे सुरीले गायकों में गिनती होती है तलत महमूद की। सलोनी और मखमली आवाज के जादूगर तलत महमूद के सैकड़ों नगमे और गजलें फिजा में आज भी घुलकर संगीत प्रेमियों को मदहोश करती हैं। तलत महमूद की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन के कुछ पहलू सुनिए रेहान फजल से आज की विवेचना में।
जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए।
कहा जाता है कि 50 के दशक में जब भी संगीत की कोई महफिल होती थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गज भी मौजूद रहते थे, सबसे आखिर में तलत महमूद को बुलाया जाता था। ये रुतबा था तलत महमूद का। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या किशोर कुमार जैसा गा सकते हैं या गाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल से मिलेगा जो अपनी आवाज में तलत महमूद जैसी मधुरता और नजाकत पैदा कर सके।
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का,
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का,
अफसाना मेरा बन गया अफसाना।
मानिक प्रेमचंद ने हिंदी फिल्म संगीत पर कई किताबें लिखी हैं, उनमें से एक है तलत महमूद की जीवनी, द वेलवेट वॉइस। तलत की आवाज से उनका फैसिनेशन शुरू हुआ था 1958 में।
मैं कुछ 7 साल का था जब मेरी फैमिली किसी गाड़ी में लौट रही थी रिपब्लिक डे परेड से। उस टाइम रेडियो पे ये गाना बज रहा था, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। ये गपशप कर रहे थे एल्डर्स और जब ये गाना ब्रॉडकास्ट होने शुरू हुआ, इनकी बातें कम हो गई और एक खामोश सा वातावरण बन गया वहां पर। तो एक किस्म का रिस्पेक्ट दिया गया इस गाने को मेरे एल्डर ने। दिस वॉज द एब्सोल्यूट बिगिनिंग ऑफ माई फैसिनेशन फॉर तलत महमूद।
रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे तो जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले छाए।
24 फरवरी 1924 को लखनऊ में पैदा हुए तलत महमूद ने लखनऊ के अदब और तहजीब को आत्मसात कर लिया था। वो जितना मीठा गाते थे उतना ही मीठा बोलते भी थे। तलत महमूद की नातिन सहर जमा एक पत्रकार हैं और मिरर नाउ चैनल से जुड़ी हुई हैं।
द वेरी जेंटल मैनरिज्म्स और लखनऊ की तहजीब तो बहुत ज़्यादा कूट कूट के जैसे उनके अंदर थी, और मगर मिजाज के बहुत जेंटल थे, हसमुख बहुत थे, मजाक बहुत करते थे। और बहुत ज़िंदा दिल थे। मैंने तो उनके साथ रिलेटिवली थोड़ा कम वक्त गुजारा है, मेरी अम्मी ने तो पूरा अपना बचपन उनके साथ गुजारा है बॉम्बे में। वो जब छोटे छोटे थे वो उनके स्कूल के कॉमिक्स पढ़ते थे, उनसे ज़्यादा वो आइसक्रीम के शौकीन थे। ही वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड अप एज अ जेंटलमैन, सूटेड बूटेड, वेरी वेल प्रेजेंटेड, वेरी क्रिस्प, एंड ऑफ कोर्स ही लव्ड ट्रैवलिंग। ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज फैंस एंड फॉलोअर्स। आई थिंक उसके एक सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले गायक थे जिन्होंने वर्ल्ड टूर्स शुरू किए, उनसे पहले किसी ने वर्ल्ड टूर्स नहीं किए थे। और उन्होंने ये शुरू किया बिल्कुल एट द पीक ऑफ हिज करियर। आप इमेजिन करिए कि 1950s में उन्होंने अपना फर्स्ट वर्ल्ड टूर किया टू ईस्ट अफ्रीका, एंड ही वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल। उसके बाद इनफैक्ट लता जी ने परफॉर्म किया एंड ही वेंट टू मैडिसन स्क्वायर एज वेल।
तलत महमूद ने संगीत की पढ़ाई लखनऊ के भातकंडे संगीत महाविद्यालय में की, जिसे पहले मैरिस कॉलेज कहा जाता था। तलत प्रवेश परीक्षा के रिटन टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जब उनकी स्वर परीक्षा हुई तो परीक्षक उनका आलाप सुनकर हतप्रभ रह गए और बिना कोई सवाल पूछे तलत महमूद का दाखला कर लिया गया।
इनको कुछ आता तो था नहीं, थैली तो कुछ इनकी थी नहीं, ये तो ऊपर वाले की वाणी लेके आए थे। ये था कि उनको ये जो थियोरी वगैरह होती है, आज भी कई लोग सरगम को नहीं समझते, लेकिन जब आवाज उनकी निकली, जब उन्होंने आलाप छेड़ी तो उन्होंने खारे बाप रे ये क्या हो गया।
बाद में तलत ने उसी आलाप को शिकस्त फिल्म के गाने सपनों की सुहानी दुनिया को आंखों में बसाना मुश्किल है की शुरुआत में गाया। चालीस का दशक शुरू होते होते वो ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से गाने लगे थे। 1941 में वो कलकत्ता चले गए, जहां HMV ने 30 रुपए प्रति गाने पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कलकत्ता में काफी नाम कमाने के बाद तलत महमूद बंबई पहुंचे। आगे की कहानी खुद उनकी जुबानी।
जब मैं बंबई आया हूँ तो यहाँ तो बहुत से लोगों को हमेशा बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन चूंकि मेरा गाना तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला नसरी बेइंतहा पॉपुलर था, तो वो तो फ़ौरन ही आती है, मुझे लोगों ने ऑफर्स देना शुरू किए। लेकिन ये एक सबसे बड़ी शर्त होती थी पहले कि आप पहले गाना रिकॉर्ड करें और हम वो देखें, क्योंकि आप जानते थे ना कि बॉम्बे की इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो वो चीज़ ज़रा कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं थोड़े दिनों इंतज़ार करता रहा। इस अरसे में अनिल विश्वास साहब ने मुझे मैसेज भिजवाया कि भाई तलत तुम आओ, तुम्हारे लिए गाना तैयार। तो मैं अनिल दा के पास भी नहीं गया और बैठा रहा घर पे, तीन चार दफ़ा उनका मैसेज आया। फिर वो एक दिन पता चला कि अनिल दा गाड़ी में बैठे चले आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे आकर कहा कि अच्छा था भाई, क्या तमाशा है। तो उन्होंने कहा कि अनिल दा, सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने मुझे ऐसा डरा दिया, मैं ही सोच रहा था कि शायद आप भी करें। कहते भाई आओ तो देखो तो, अगर गाना तुम्हारे लिए बनाया, दिलीप कुमार के लिए गा रहे हो। हमने जाके ये गाना रिहर्स किया, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो।
दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अपना बराया मेहरबाना, मेहरबा कोई ना हो।
अपने करियर के शुरुआती दौर में उनकी आवाज में पाए जाने वाले कंपन की वजह से उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। ये अलग बात है कि यही कंपन, यही लर्जिश आगे चलकर उनके गाने की USP बनी।
वो बोलते भी इसी तरह से थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, उनको सुनने के लिए करीब में आना पड़ता था उनके। आजकल थोड़ा सा डिंग डॉंग हो गया है, गिटार सुटार बजने लगी है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। इनका जो नेचर था दैट वॉज ट्रांसलेटिंग इन टू हिज वॉइस, और बहुत अदबी आदमी थे ये। आई जस्ट डोंट मीन अलिफ बे पे थे पढ़ना लिखना, आई मीन डीप इन टू कल्चर एंड पोइट्री। आपने अगर इनके बारे में कुछ सोचा है, इनकी इनके गानों को अप्रिशिएट किया है, अगर आप उस टाइप का जौक और शौक रखते हैं, तो आपको थोड़े ही वक्त में समझ आ जाएगा कि वन ऑफ द सेंट्रल फीचर्स ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ हिज म्यूजिक इज द गुड पोइट्री इन दोज सॉन्ग्स। दैट्स व्हाई द सॉन्ग्स हैव एंडेड अप सो ब्यूटीफुल। इनको वो रेंज नहीं थी जो मोहम्मद रफी की आवाज में थी, जो ऊपर जाना नीचे आना एंड अदर एक्सेप्शनल थिंग। इनकी आवाज में वो बैरिटोन नहीं था जो मिसाल के तौर पे हेमंत कुमार की आवाज में था, वो ट्रेबल नहीं था जो मुकेश की आवाज में था, तो अपने जो दायरे में जो घूम रहे थे ये गजल के सॉफ्ट सिंगिंग के दायरे में, पिच का जो बैंड था, नॉट वेरी हाई पिच नॉट टू लो पिच, उसमें जो ये गा रहे थे वो गजल का काम उम्दा कर रहे थे और उसमें जो अल्फाज हैं वो क्रिटिकल हुआ करते थे।
तलत महमूद की मन्ना डे से बहुत नजदीकी दोस्ती थी। मन्ना डे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
एक बार मदन मोहन ने बम्बई आई मलिका ये गजल बेगम अख्तर के सम्मान में रात्रि भोज दिया जिसमें बम्बई की हर बड़ी संगीत हस्ती को बुलाया गया। जैसा कि उम्मीद थी, भोज से पहले संगीत की एक महफिल हुई और सबसे पहले तलत महमूद से माइक के सामने आने के लिए कहा गया। जैसे ही उनकी पहली गजल खत्म हुई, इतनी तालियां बजीं कि मेरे और मोहम्मद रफी के बीचों बीच बैठे किशोर कुमार ने हम दोनों से फुसफुसा कर कहा, चलिए हम लोग चुपके से भाग निकलें, तलत के फैलाए जादू के बाद अब हम लोगों की कौन सुनेगा।
1962 के भारत चीन युद्ध से पहले जब चीन के प्रधानमंत्री चुएनलाई भारत आए तो वो मुंबई भी गए। वहां कार्यवाहक राज्यपाल मोहम्मद करीम चागला ने उनके सम्मान में एक संगीत सम्मेलन आयोजित किया। थोड़ी देर बाद चुएनलाई ने फरमाइश की कि वो आवारा हूं गाना सुनना चाहते हैं। वहां मुकेश तो थे नहीं, इसलिए तलत से ही अनुरोध किया गया कि वो आवारा हूं गाएं। तलत ने चुएनलाई को निराश नहीं किया।
चुएनलाई आए, मेहमान खुसूसी, और उनको ये आवारा हूं सुनना था, लेकिन वो इनका गाना भी नहीं था और इनको उसके बोल भी पता नहीं थे, तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मगर उसने कहा हवाला हूँ हवाला हूँ, तो फिर जैसी जैन साहबा उन्होंने कहा भाई कुछ भी आप करो यार, कुछ भी उसमें आप में कुछ बोल डाल दो, ये तो समझेंगे नहीं, लेकिन धुन मत बदलना।
तो पूरा गाना सुनाया या 3 या 4 लाइन गुनगुना दी?
नहीं नहीं, मुखड़ा और अंतरा।
आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ।
इस सब के बावजूद मात्र 40 साल की उम्र में तलत महमूद के करियर का अंत शुरू हो गया। 40 साल की उम्र में गायक आमतौर से अपने पीक पर पहुंचते हैं, लेकिन 40 की उम्र में तलत का डिक्लाइन शुरू हो गया।
अर्ली बर्नआउट है, इसमें कोई शक नहीं है। दैट यू नो एट 40 यू डोंट फोल्ड अप योर दुकान, कोई भी ऐसा नहीं करता। रफी साहब ने नहीं किया, किशोर ने नहीं किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, आप हेमंत कुमार, जहां पर भी आप देखें, 40 पे यू डोंट क्लोज अप योर शॉप एंड से आई एम रनिंग आउट ऑफ बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन अर्ली बर्नआउट, टू मेनी ट्रिप्स अब्रॉड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, और उसके बाद इनका थोड़ा दिल भी उठ गया था बिकॉज काफी कुछ नकल हुआ करती थी और इनको बुलाया जाता था, रिकॉर्ड करवाया जाता था, फिर किसी और से गाने गवाए जाते थे और फिल्मों में लिए जाते थे। उस आदमी से आप रिकॉर्ड करवाओ और फिर दूसरे किसी को दे दो गाने, तो वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे।
जाहिर है जमाना बदल रहा था, संगीत के नए प्रतिमान गढ़े जा रहे थे, शब्दों पर शोर भरा संगीत हावी हो रहा था जिसमें तलत अपने आप को मिसफिट पा रहे थे।
एक चीज वो बहुत अच्छी तरह समझते थे कि उनकी आवाज की जो क्वालिटी है वो सिर्फ कुछ टाइप के गानों के लिए है। व्हेन म्यूजिक चेंज, जब ऑर्केस्ट्रा हैवी हो गया, ही रियलाइज्ड कि उनकी आवाज उन गानों में नहीं ढलती, सो ही ऑल्सो स्टेड अवे फ्रॉम इट। तो उनको वो खुद ही समझती कि मेरे आवाज में एक क्वालिटी है जो कुछ तरीके के गानों में अच्छी लगेगी, सो मे बी फॉर हार्ड बीट्स एंड लाउड म्यूजिक में उनकी आवाज नहीं अच्छी लगती, एंड ही रियलाइज्ड दैट वेरी वेल।
9 मई 1998 को पार्किंसन बीमारी से जूझते हुए तलत महमूद ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मानिक प्रेमचंद को अभी तक उनसे अपनी आखिरी मुलाकातें याद हैं।
जब मैं इनको आखिरी 2-3 बार मिला था तो ये बोल नहीं पा रहे थे और थोड़ा सा पार्किंसन वाला इन पे दौर पड़ा था। मैं एक जज्बाती किस्म का इंसान हूँ और वो गालिब ने क्या कहा था कि मुझे मत छेड़ जोशी गिरिया से तूफान उठा दूंगा। मैंने उनसे उस टाइम पे भी बातें करता था और ये हाँ ना करते थे, मुझे समझते थे। आई यूज टू फील बैड फॉर अ पर्सन हु नॉट ओनली स्पोक वेल बट सैंग ब्यूटिफुली, और अब मैं उनके सामने बैठा हूँ, समबडी हु आई कांट प्रेज इनफ, वो बोल नहीं पा रहे, और मेरा कलेजा बैठा जाता था कि ये काश की उनकी तकलीफें मुझे आ जाती थी। मेरे अंदर जो है मेमोरीज ये नहीं जा रही।
मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, नदी को जलाना, मुझे भूल जाना।
आपको हम कैसे भूल सकते हैं तलत साहब। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल कुमार, फेसबुक तक पहुंचाने में सहयोग दिया अभिमन्यु ने, मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।